जानकार हो, कर्म सिद्धांत के बारे में तो आप बहुत जानकार हो, राय व्यक्ति जानते कि कैसे कर्म का दंड होता है, और आयु कर्म के दंड के बारे में तो हमने सुना है कि आप बहुत ज्यादा अच्छे से जानते हो। हम तो आपसे चर्चा और कर्म चाहते। अब जैसे पंडित जी से ऐसा कहा सो सब भूल गए भी बातें, तो किसी पंडित से अगर देखो पंडित जी को रहने वाले उनको पंडित जी है, और अधूरा ज्ञान वाले की बात कर रहे हैं मैं, जो समृद्ध है जो ज्ञानवान है उसके भी एक विद्वान हूं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं। तो वो क्वेश्चन करके एकदम जो अगर कोई से पूछ लिया थोड़ा पंडित हो जानता हो तो तुरंत पानी बैठ जाओ, तो वो तुरंत कहना अच्छा अच्छा चलो बाकी बात तो बाद में करेंगे, देख तेरे को क्या पूछना है मेरे से, पूछ क्या पूछना है। तो पहले और कचूरी पंडित जी साहब जाए पूछने थे कि आयुबंध कैसा होता, तो पंडित जी ने बहुत जल्दी से समझाना शुरू कर दिया कि जितनी आयु कम बांध करके जाते हैं उसका जब दो तिहाई बीत जाता है तो पहला आकर्ष काल आता है, फिर जितनी आयु बची है न हो पाया अगर आयु बंध तो फिर दूसरा दो तिहाई बीत जाने के बाद दूसरा आकर्ष काल आता, फिर भी न हो तो ऐसे आठ मौके जीवन में आते हैं और आयु बंध जाती है। अगर आठ ही मौका पर आयु न बंधे तो जो जीव अपने मरण के अंतर्मुहूर्त पहले नई आयु का बंध करके और मरण पर कोई दूसरे में चला क्या। पंडित जी बहुत अच्छी बात बताई लेकिन क्षमा करना, और उनके जो है वर्णन जी के आंसू आ गए। कहने क्यों भाई क्या हुआ, हमने तो बात तुम्हें सब समझाई कि मैं कुछ नहीं पंडित जी, हम तो मन तक बैठी बैठी जाए सोच रहे थे कि आधा घंटा जो आपने गाँव को हमें अगर उस समय कहूँ कि बंद हुई है तो आपको कौन सी बनी हुई है जाए, हम सोच रहे थे इससे हमें कष्ट हुआ बहुत कषाय हम करते चले जाते हैं, मन वचन काय की प्रवृत्ति करते चले जाते हैं और कर्म फलस्वी भी हमें मालूम है कि कर्म सब हमें बांधना पड़ते हैं, हमें उनको भूलेंगे जो हम बांधते हैं और करते चले जाते हैं। इतनी छोटी सी बात हमारे समझ में नहीं आती कि मैं बांधे होते मैं भोगना पड़ता, भोगने पर हमारा बस नहीं है, बांधने पर तो हमारा बस है कि हमें बांधना है कि नहीं बांधना। कर्म करने में हम जितने स्वतंत्र हैं कर्म के फल भोगने में भी हम इतने परतंत्र नहीं है जितना कि हमने मान लिया है। दोनों चीजों में ही हम स्वतंत्र हैं, कर्म करने में भी स्वतंत्र हैं और कर्म का फल भोगने में भी स्वतंत्र हैं। हम जाने इस बात को और अपने आत्मकल्याण के लिए जो कर्म की बाधा आती है कि चार कर्म होने का उदय है हम संयम नहीं ग्रहण कर पाते, दर्शन होने का उदय है हमें श्रद्धा नहीं हो पाता है, तो भैया अब तो उस बात को छोड़ दो, अब तो हम जैसा अपना पुरुषार्थ से करना चाहेंगे वैसा हम अपना उपाय शांति का कर लेंगे, तो अब तो अपने शांति के उपाय के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। फिर बैठेंगे फिर कर्म के बारे में और विचार करेंगे, अभी इतने से रुक नहीं होगा, समझेंगे कि कैसे हम अपने बांधे कर्मों को काटें और कैसे हम आगे और नए कर्मों के बंधन से बचे, इस प्रक्रिया को समझ ले। आश्रय और बंध ये दो तत्व ही मुझे संसार में भटकाने वाले हैं, अगर इनकी तासीर हमको समझ में आ जाए, आश्रय और बंध तत्व हमें मालूम पड़ जाए तो हम बड़ी आसानी से जो है इससे बच सकते हैं। ऐसी भावना के साथ में कि हम अपने मोक्ष मार्ग को निर्विघ्न आसानी से पार करेंगे और अपने कर्मों को क्षय करके परम पद को प्राप्त करेंगे, ऐसी भावना के साथ बोलिए आचार्य विनोद विद्यासागर मुनि।
साधक उस सत्य स्वरूपी अनंत गुण वाले अपने आत्म तत्व की खोज में निकला है तो निसंदेह होकर के आगे बढ़ गया है, उसे अब इसमें किसी तरह का कोई संदेह नहीं रहा कि मैं हूं या नहीं, या मैं ही अनंत वाला हूं या कोई और ही है, ये संदेह उसका चला गया है। उसे ऐसा विश्वास ऐसी रुचि हो गई है कि नहीं वो तो मैं ही हूं और मुझे अपने को ही पाना है, ऐसा सोच करके उसने एक कदम अपना आगे बढ़ा लिया। जिसने अपने जीवन में एक कदम बढ़ाया उसे दूसरे कदम बढ़ाने में ज्यादा कठिनाई नहीं होती, वैसे होना भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि एक पैर आगे बढ़ जाने के बाद दूसरे पैर को कोई आकांक्षा नहीं होनी चाहिए कि हम आगे बढ़ेंगे तो उससे क्या लाभ होगा, क्या मिलेगा, ऐसी कोई आकांक्षा उसे नहीं होती। साधक के जीवन में भी ऐसा ही होना चाहिए, वह निराकांक्ष भाव से उस अपने आत्म तत्व को पाने के लिए निकल पड़े। संसार में बहुत से तरह तरह की आकांक्षाएं हैं, उन आकांक्षाओं के बीहर जंगल में यह सिद्ध स्वरूपी आत्मा भटक जाता है, वो भूल जाता है कि मैं जिसके पीछे दौड़ रहा हूं वह तो मात्र इस शरीर के साथ साथ चलने वाली परछाई की तरह है, वह कभी पकड़ी नहीं जा सकती, उसे कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता है, उसे वही प्राप्त कर सकता है जो रुक जाता है, सारी आकांक्षाओं से अपने को मोड़ लेता है और एक जगह स्थित होने की कोशिश करता है, वही व्यक्ति न पा पाता है। सत्य की खोज करने वाला व्यक्ति, उसके लिए एक ही आकांक्षा होती है, जिस किसी भी तरह हमें सत्य की प्राप्ति होनी चाहिए, इसके अलावा और कोई आकांक्षा उसे नहीं होती है। क्या ऐसा हमें है, जबकि हम आस्थावान हैं, श्रद्धालु, सम्यक श्रद्धा वाले, तो फिर यदि हमारे जीवन में मात्र सत्य की ही आकांक्षा है तो उसे हम अवश्य पाएंगे, लेकिन एक बार अंतस में टटोल करके देख लेना कि क्या सत्य के अलावा भी कहीं कोई आकांक्षाएं जीवित तो नहीं है, उसके किसी कोने में आकांक्षाओं का ढेर तो नहीं लगा हुआ है कि एक के बाद एक, एक और एक के बाद एक पूरी करने की आकांक्षा में लगा हुआ है, तो वह व्यक्ति सत्य को नहीं प्राप्त कर सकता है। गीता में अर्जुन को संबोधन देते हुए कृष्ण ने एक श्लोक में आधी पंक्ति बहुत अच्छी कही थी, कर्मण्येवाधिकारस् न फलेषु कदाचन, कर्म में विश्वास रखो, सत्य के मार्ग पर निकले हो तो विश्वास रखो और वह कार्य करते चले जाओ जिससे सत्य की प्राप्ति होती है, न फलेषु कदाचन, किंतु फल की तरफ मुड़ करके मत देखो कि ऐसा करने के बाद क्या मिल रहा है हमें, यदि मिलने की आकांक्षाएं अभी जीवित हैं कि ऐसा करने से ये भी मिलना चाहिए, ऐसा करने से ये भी मिलना चाहिए, तो वह आकांक्षाओं की तरफ जब मुड़ जाता है तो सत्य से वंचित हो जाता है। हमें अपनी दृष्टि में मूल्य किसके लिए देना है ये भी निर्णय हमें ही करना है। हमारी दृष्टि में सबसे ज्यादा मूल्यवान क्या है, सत्य ज्यादा मूल्यवान है या संसार की और अनेकों वस्तुएं हैं, यह निर्णय हमें स्वयं करना है, दूसरे से नहीं कराना है, दूसरे से पूछना भी नहीं है। जिसके भीतर अभी बहुत सारी आकांक्षाएं जीवित हों, बहुत सारी आकांक्षाओं का भी अंबार लगा हो, तो मानना पड़ेगा कि अभी उसकी दृष्टि में बाह्य पदार्थों का ज्यादा मूल्य है बशर्ते अपने आत्म तत्व के।
हम कहते जरूर हैं कि सत्य बहुत मूल्यवान है, लेकिन अभी हमारी श्रद्धा में उतरा नहीं है। यदि एक बार श्रद्धा में उतर जाता कि सत्य ही अधिक मूल्यवान है, तो संसार के पदार्थों की प्राप्ति करने की जो चाहत, उसे पाने की जो आकांक्षाएं हमारे भीतर एक के बाद एक करके चली आ रही हैं, ये हो नहीं सकती। ये थर्मामीटर लगा लेना अपने आप में कि यदि आकांक्षाएं संसार के पदार्थों को पाने की हैं, तो अभी सत्य को पाने की कोई आकांक्षा हमारे अंदर नहीं है। और जिसे सत्य के पाने की आकांक्षा हो जाती, उसकी दृष्टि में संसार की और जितने भी पदार्थ हैं उनका कोई मूल्य होता नहीं है। लेकिन अभी तो हमें संसार की वस्तुओं से बहुत ज्यादा लगाव है। आचार्यों ने कहा जरूर है कि सम्यक दृष्टि के आचरण में बहुत परिवर्तन आ जाता है, लेकिन यदि हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आया तो हम कह नहीं सकते कि हम सम्यक दृष्टि हैं। हम देखा देखी कह सकते हैं, हम बाहर से कह सकते हैं, कथन में हो सकता कि हम सम्यक दृष्टि हैं, लेकिन आचरण में भीतर में सम्यक दर्शन हुआ है कि नहीं, ये नहीं कह सकते। क्योंकि अभी उसकी दृष्टि में बाह्य जड़ पदार्थों का बहुत ज्यादा मूल्य है। आचार्य समन्वत महाराज ने कहा, संसार शरीर भोग निर्विण्णा, सम्यक दर्शन शुद्ध। जो सम्यक दर्शन से शुद्ध है, जो आस्था से पवित्र है, उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। वह संसार शरीर एवं भोगों से उदासीन होता है। विचार करना है संसार के प्रति कितनी आसक्ति अभी हमारे अंदर जीवित है, संसार के पदार्थों को पाने की कितनी जिज्ञासा अभी हमारे अंदर है कि हम कह सकेंगे अपने आप को कि हम सम्यक दृष्टि हैं? नहीं। जो संसार से भयभीत हो गया है, जिसके अंदर में संसार आसार दिखने लगा है, उदासीन हो गया है, अभी संसार में रह रहा है, लेकिन संसार उसके भीतर नहीं है, उसका नाम है सम्यक दृष्टि। लेकिन जो संसार से विरक्त भी हो जाए, छोड़ करके भी चला जाए, अभी उसके भीतर में संसार है, तो अभी मिथ्या दृष्टि है, भले वो साधु क्यों ना हो जाए। आपको कठिन लग सकता है, कटु लग सकता है, लेकिन सत्य है, संसार उसके भीतर में है। उसके विश्वास में भी संसार बैठा हुआ है कि मेरा काम संसार के पदार्थों से बनेगा, मेरी पूर्ति संसार के पदार्थों से होगी। उसके भीतर अभी संसार है, संसार के प्रति मोह है, ममत्व, लगाव। लेकिन श्रद्धालु के भीतर में संसार नहीं होता। उसके लिए संसार तो एक क्षणिक प्रणवत दिखाई देता है, ये तो विनश्वर है, विनाशिक है, इसका स्वभाव अलग है, मेरा स्वभाव अलग है, मैं एक दूसरे के स्वभाव में मिल नहीं सकता, तो संसार से मेरा उद्धार हो नहीं सकता है। संसार में तो रहने के कारण संसार ही मिलता है, अब मुझे संसार को छोड़ना है, ऐसा विश्वास, ऐसी आस्था उसके अंदर आ जाती। इसलिए वो संसार में रहते हुए भी संसार से उदासीन होता है। भरत चक्रवर्ती सम्राट सारे वैभव के बीच रहते हुए भी उनके भीतर में वैभव नहीं था, उनकी आस्था में कोई रस नहीं आ रहा था, उससे बहुत उदासीन थे कि हम रह सकते हैं? ऐसे रहना पड़ेगा, ये इस तरह की धारणा पैदा करनी पड़ेगी निराकांक्ष होने की, उदासीन होने की। अभी तो संसार में बहुत आकांक्षाएं हैं,
उनसे उदास होना पड़ेगा, विरक्त होना पड़ेगा। सत्य की खोजी के लिए संसार कोई वस्तु नहीं होती है, उसके लिए तो एकमात्र एक ही दिखता है, जो सबसे सुंदर सबसे श्रेष्ठ जो अपना है, वह शरीर से भी विरक्त होता है। शरीर है, शरीर प्राप्त हुआ है, शरीर में पीड़ा भी होती है, व्याधि भी होती है, शरीर में भूख और प्यास भी सताती है, लेकिन ये सब होते हुए भी, इनकी पूर्ति करते हुए भी उसकी दृष्टि में ये विश्वास बना हुआ है कि मैं नहीं खाता हूं, मैं नहीं पीता हूं, मुझे भूख नहीं लगती है, मुझे प्यास नहीं लगती है, मैं बीमार नहीं होता हूं। ये तो हमारे स्वभाव का विपरीत परिणमन है। ये हमारी मूल की परिणति है कि शरीर और आत्मा में एकत्व बुद्धि है, इसलिए मुझे प्यास भी लगती है, भूख भी लगती है, पीड़ा भी होती है। लेकिन उसकी दृष्टि में आ जाता है कि शरीर अलग है, मैं अलग हूं। शरीर का संबंध जब तक है तभी तक ये वेदना है, ये कर्म हमारे साथ चल रहा है, ऐसा मान रहा है, शरीर से विरक्त होता है, शरीर में नहीं हूं, वो शरीर न मैं हूं न मैं शरीर हूं। शरीर की संपूर्ण क्रियाओं से विरक्ति का भाव उसके जीवन में आ जाता है, और भोगों से ये बात बड़ी कठिन है। जहां भोगों की बात आती है वहां हम जरा पीछे खसकने को तैयार हो जाते हैं। महाराज जी और सब चर्चाएं करिए, आप बहुत अच्छा उपदेश करिए, आप हमारी पर्सनल जीवन में बिल्कुल भी टच मत करिए। भोगों की बात कहे कि आप हमें क्या कराना चाहते हैं, क्या बिल्कुल बाबा जी बनाना चाहते हैं क्या? नहीं, मैं आपको भोगों से नहीं बचाना चाहता हूं, मैं आपके लिए अनंत भोगों का भोगता बनाना चाहता हूं। क्या तुच्छ भोगों के प्रति दौड़ रहे हो तुम? ये तुम्हारा स्वभाव है, इनको भोगते भोगते अनंत जीवन निकल गया लेकिन कभी तृप्ति नहीं मिली। एक बार ऐसा भोग करो कि कभी दूसरे पदार्थों के भोग करने की लिए समय ही ना रहे, आकांक्षा ही पैदा ना हो, ऐसा अनंत का भोग करके तो देखो। मैं आपके भोग नहीं छुड़ा सकता क्योंकि आपका भोगतापना ये आपके स्वभाव में आ गया है। आपने बहुत सारे लक्षण पड़े होंगे द्रव संग्रह में, कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि जी बहुत लक्षण है इस तुम्हारे स्वभाव में। शुद्ध भगवान भी अपनी आत्माओं का भोग करते में भी भोग से वंचित नहीं है, लेकिन भोग किसका करना है, किन भोगों के प्रति रुचि होनी चाहिए, ये तो निर्णय करना होगा। शाश्वत भोग या विनाशिक, सांसारिक भोग या आत्मिक, हमें निर्णय कर लेना है। ये तो निर्णय कर चुके महाराज जी, हम तो जानते हैं कि संसार में बिल्कुल सुख नहीं है, सुख आत्मा में ही है, तो भैया फिर उसे पाने की कोशिश क्यों नहीं करते? कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा जीवन दोहरा है। कल महाराज जी ने भी कहा था, हम दोहरा जीवन जीते हैं, इन भोगों को छोड़ना नहीं चाहते हैं और वो शाश्वत आत्मिक भोग को पाना चाहते हैं। भैया दोनों हाथ से लड्डू खाना चाहते हो, ये तो एक तो छोड़ना पड़ेगा, खाली करो एक पहले, तब कुछ काम बनेगा। हमारे कवियों ने लिखा है, दो मुख सुई सिले न कंथा, दो पग पंथी चले न पंथा, विषय भोग और शोषुक जाने, दो ही बात ना बने सयाने। हम क्या चाहते हैं? संसार की सारी आकांक्षाओं को पूर्ण करना चाहते हैं, पांच इंद्रियों को भोगों को पूरा भोगना चाहते हैं, उसमें पूरा रस आ रहा है, और कहते हैं कि हमें सत्य का रस आना चाहिए, हमें आत्मा का आनंद आना चाहिए, हमें आत्मिक भोगों की उपलब्धि होनी चाहिए। कभी नहीं हो सकती है, सुई का भी जिसमें दो तरफ से मुंह होगा वो सुई का भी कपड़े को नहीं सिल सकती है। आदमी दोनों पैर से दो रास्ते पर नहीं चल सकता है कि पश्चिम में भी चले पूर्व में भी चले, कभी नहीं हो सकता। लेकिन हम करना चाहते हैं, हम विषय भी भोगना चाहते हैं संसार के, पूर्वात्मा का आनंद भी लेना चाहते हैं, नहीं, अपने इस विषय भोग की वासना से हट करके, इससे विरक्त होकर के, बलात् छोड़ करके नहीं, किसी के कहने से छोड़ देने से किसी को आत्मिक सुख नहीं मिलता। आप क्या छोड़ेंगे? आप छोड़ देंगे, जरूरी नहीं कि आपको आत्मिक सुख मिल जाए। एक अभव्य जीव मुनि बन जाने के बाद सारे पांचों इंद्रियों की विषय सामग्री को छोड़ देता, स्वप्न में भी भोग नहीं करता, लेकिन उसे आत्मा के भोग का आनंद नहीं आता, उसकी दृष्टि अलग होती है। सद्दहदी पत्तहदी रोचोदी पुनोदी फासोदी धन्यम भोग निमित्तम मधुसो खम खयम निमित्तम। वो भी श्रद्धा करता है, विश्वास करता है, स्पर्श करता है, प्रतीति करता है आत्मा के विषय में, लेकिन मात्र उसका ये सर्वधर्म का आचरण कैसा है, क्या चाहता है? सब कुछ छोड़ा संसार उसने, विषय भोग छोड़े, उस तरफ देखता भी नहीं है, लेकिन क्या कौन सी कमी है? धन्यम भोग निमित्तम मधुसु कम खान निमित्तम। धर्म करने के उपरांत भी भोगों की आकांक्षा है। तो मनुष्य पर्याय के तुच्छ भोग छोड़ देंगे, स्वर्ग के भोग मिलेंगे, 16 स्वर्ग तक के और गिरिवेक तक के भोग मिल जाएंगे। कोई घाटा नहीं इनको छोड़ने में, फायदा है। कहीं आप ऐसा तो नहीं कर रहे कि पांच इंद्रियों के विषय भोग सामग्री को छोड़ते रहे हैं, लेकिन इतना छोड़ने के बाद इतने पाने की आकांक्षा से छोड़ रहे हैं, तो आप व्यापारी हैं, आप दुकानदारी कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं। आपका भोग का त्याग कोई त्याग नहीं है, आपका त्याग नहीं है, आपके लिए तो पाने की आकांक्षा है। अभी क्या छोड़ा आपने? कुछ भी नहीं छोड़ा। हमें इन भोगों से विरक्त होना है। पहले ये लगने लगे कि इसमें रस नहीं है, लेकिन अभी तो रस आता है। हमारी दृष्टि में भ्रम पैदा है, अभी हमारे लिए विश्वास ही नहीं आ रहा। भले ही सत्य के मार्ग पर हम निकल पड़े हैं निसंदेह होकर के, लेकिन अभी तो कहीं ना कहीं भ्रांति पड़ी हुई है कि इन विषय भोगों में हमें आनंद आ रहा है। आपने देखा होगा, जब कोई कुत्ता, उसे कहीं कोई हड्डी का टुकड़ा मिल जाता है तो उसे बार बार चबाता है, घंटों चबाता है, और चबाने के बाद उसे आनंद आता है, उसे ऐसा लगता है कि जैसे मुझे इसमें से रक्त प्राप्त हो रहा हो, वो रक्त का स्वाद उसमें से लेता है। आप कहेंगे कि बड़ा मूर्ख है वो, सूखी हड्डी में से कहीं रक्त का स्वाद आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, लेकिन उसे आ रहा है, उसका भ्रम है, उसे नहीं मालूम इस हड्डी के टुकड़े को चबाने से मेरे ही मसूड़े फट जाते हैं और मुंह में से रक्त आने लगता है, और उसी रक्त का स्वाद लेकर के आनंद मानता है कि मुझे इस हड्डी से रक्त मिल रहा है। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं क्या? हमें भी, हमारे अंदर में भी ऐसी विश्वास, ऐसी आस्था बनी हुई है कि इन विषय भोगों को भोग लेने के बाद ऐसा लगता है कि सुख तो इसी में से मिलता, आनंद तो इसी में से आता है, भले वो शुष्क हो, लेकिन अभी हमारी श्रद्धा में नहीं उतरे हैं, दृष्टि बदलना होगी। अभी सच्चे सुख की पहचान करना होगी, सच्चे रस की पहचान करना होगी, सच्चे आनंद की पहचान करना होगी। अभी नहीं है, अभी बिल्कुल भी आनंद की पहचान नहीं है। अभी तो हम विषय भोगों में आमूल चूल डूबे हुए हैं। हम बदलें अपनी प्रवृत्ति को, लेकिन विरक्ति से बदलें।
और एक श्रद्धालु की अंदर में जो विरक्ति का भाव आता है,
संसार शरीर भोगों से विरक्ति जरूरों से होती है,
अवश्य होती है, उसका स्वरूप उसे मालूम हो जाता है, वो विश्वास करता है। संसार और शरीर भोगों के बीच रहते हुए भी उसमें आसक्त नहीं होता है, भोगता है, उदासीन भाव से भोगता है।
लेकिन हम अभी बिल्कुल आसक्ति के साथ भोग रहे हैं, हमें अपनी आसक्ति को कम करने की कोशिश करना है। ये आकांक्षाएं आदमी के लिए बाहर की ओर ले जाती हैं।
जब जब भी किसी व्यक्ति के अंदर में कोई आकांक्षा पैदा हुई है, तब तक वह बाहर ही दौड़ा है, भीतर कभी नहीं गया।
भूख शांत करना है तो भोजन की तलाश में बाहर दौड़ता है, प्यास को शांत करना है तो पानी की तलाश में बाहर दौड़ता है,
रसना इंद्रिय के विषयों को प्राप्त करना है तो रसना इंद्रिय के विषयों की तरफ, पदार्थों की तरफ बाहर दौड़ता है। जितने भी विषय भोगों को हम तृप्त करना चाहते हैं, आकांक्षा जितनी जीवित होती है उतनी उतनी हमारी यात्रा बाहर की तरफ होती है।
लेकिन निराकांक्ष भीतर की यात्रा है, अंतस की यात्रा है। जो अपने भीतर की यात्रा करना चाहता है उसे निराकांक्ष होना पड़ेगा।
या इन आकांक्षाओं का स्वभाव ही अलग है, इन आकांक्षाओं के माध्यम से प्राप्त होने वाले भोग सामग्री का स्वभाव ही अलग है, लेकिन उसे हम नहीं समझ पा रहे हैं।
आचार्य श्रीमद्भगवत महाराज कहते हैं, कर्म परवशे शांति दुख रंतरितोदय पाप बीजे सुखे नास्था श्रद्धा न कांक्षणा स्मृता।
यह जो मिल रहा है भोग सामग्री,
ये कैसा है? कर्म परवशे, कर्माधीन है,
तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। लाभांतर कर्म का क्षोभ होगा तो पदार्थों की प्राप्ति होगी,
और भोग और उपभोगांतरा कर्म का क्षोभ होगा तो तुम उसे भोग सकोगे और उपभोग कर सकोगे,
अन्यथा तुम कुछ नहीं कर सकते।
कर्माधीन है, कर्म परवशे, शांति ये भोग सामग्रियां हमेशा रहने वाली नहीं है, अंत से सहित हैं, आज हैं कल नहीं होंगे, ऐसा भी श्रद्धा में ऐसी श्रद्धा करनी होगी।
और दुख निरंतरित होते हैं, ये विषय सामग्री ऐसे सुख
दुख से अंतरित है, दुख से मिश्रित है,
लगता जरूर है उस कुत्ते के लिए कि आनंद आ रहा है, लेकिन मालूम है कि बाद में उसे पीड़ा होती है।
तलवार की धार पर लगी हुई चाशनी को चखने से, उसे चाटने से थोड़ी देर को आनंद तो मिलता है, लेकिन जिह्वा कट जाती है, फिर दुख भोगना पड़ता है। भोग बुरे भोग बड़ा बेरी है जग जी के, बेरस हो विपाक समय अति सेवत लागे नेके।
ये विषय भोग सामग्री भोग के वक्त बहुत अच्छी लगती है, बहुत आनंद आता है, जब इसका फल मिलता है तो दुखदायी होता है।
भोगते वक्त आनंद है, इसलिए कहे दुखों से मिश्रित है। पाप बीजे, और पाप का बीज भूत है, जितना भोगों के प्रति आसक्त होंगे उतना राग और देश से सहित आत्मा की परिणति होगी,
और आत्मा की राग देश की परिणति पाप का बीज भूत है,
इसलिए इन विषयों को भी पाप का बीज कहा है। सुखे नास्था श्रद्धा ना कांक्षा, ऐसे वैसे सुखों में जिसे आस्था नहीं है। आपको तो नाश्ता में भी आस्था है,
विषयों में भी आपको आस्था है,
नहीं
इन विषयों को विशेष सुख को क्षणिक पर ऐसे मान करके जो विश्वास करेगा उसके जीवन में ही निराकांक्ष भाव पैदा होगा। वही व्यक्ति सत्य को पा सकता है, उसकी श्रद्धा ही निराकांक्ष श्रद्धा मानी जाएगी, अन्यथा उसकी श्रद्धा से कुछ होने वाला नहीं है।
ओम छाओं का अर्थ है कि जहां हम हैं वहां तृप्ति नहीं है, जो हम हैं उसमें तृप्ति नहीं है, जो हम भोग रहे हैं उसमें बिल्कुल ही तृप्ति नहीं है, जो हमें मिला है उसमें तृप्ति नहीं है, लेकिन कहीं और तृप्ति मिलेगी, कुछ और होने में मिलेगी, कुछ और पाने में मिलेगी, कुछ और भोगने में मिलेगी। ऐसी तृप्ति आज तक किसी को नहीं मिली, मिल भी नहीं सकती है। तृप्ति उसे मिलती है जिसने इनकी तासीर समझ ली है और समझ करके इससे जो विरक्त हो गया है उसे ही तृप्ति मिली है, उसे ही आनंद मिला है, क्योंकि वो समझ चुका कि आनंद कहां पर आता है। हमें आनंद की दृष्टि बदलना होगी, विषय सुख का आनंद छोड़ करके आत्मिक आनंद के प्रति इतना विश्वास, इतनी अटूट श्रद्धा पैदा होनी चाहिए। आपका समय हो रहा है और अंत में मैं एक घटना सुना करके अपनी बात पूरी करना चाहता हूं कि हम जहां पर हैं हमें वही आनंद आ रहा है अभी। वो जिसे ऐसा आनंद आएगा वह व्यक्ति किसी दूसरे नवीन आनंद की प्राप्ति का कोई उपाय, कोई खोज उसके हो नहीं सकती है। एक भक्त था, भगवान की प्रतिदिन प्रार्थना करता था और उसकी प्रार्थना होती थी निष्काम भाव से, निराकांक्ष भाव से। कहते हैं कि उसकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर के एक देवदूत धरती पर उतरा और उसने उस भक्त से कहा कि भक्त मांग लो, तुम्हें क्या मांगना है, हम तुम्हारे इस तरह की भगवत भक्ति को देख करके बहुत प्रसन्न है, तुम मांगो क्या चाहे। तो उसने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, जिसके लिए भगवान की भक्ति प्राप्त हो रही उसके लिए संसार की कोई वस्तुओं की आकांक्षा नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। देवदूत ने बार बार निवेदन किया कि नहीं मांग लो, मैं बार बार कहता हूं ऐसा अवसर, जो चाहोगे वो मिलेगा तुम्हें। तो उसने कहा, एक ही बात कही, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवे। संसार के सभी प्राणी सुखी हो जाए ऐसा कोई वरदान दे सकते हो तो दो, संसार में कोई रोगी ना हो सके ऐसा कोई वरदान देना हो तो दो। उस दूत ने कहा कि नहीं, ये नहीं मिल सकता है। बोले क्यों, तुम्हें भी सुखी होना हो, तुम्हें स्वर्ग का सुख चाहिए तो चलो हमारे साथ, हम तुम्हें स्वर्ग का सुख दे, चले हमें नहीं चढ़ाएंगे। बहुत बड़ी नाली के किनारे खड़ा हो गया, वो देखता है कि एक प्राणी उसमें पड़ा हुआ है, शरीर से मवाद रक्त बह रहा है, मक्खियां भिनभिना रही है, कीड़े कुलबुला रहे हैं, लगता है प्राणी बहुत दुखी है और उस नाली में पड़ा हुआ है। उसने उससे निवेदन किया, क्यों भाई तुम्हें बहुत दुख है, बहुत पीड़ा है। बोले है तो तुम सुखी होना चाहोगे, होना चाहेंगे तो तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें स्वर्ग पहुंचा देंगे। उसने कहा ये स्वर्ग होता क्या पहले बताओ आप, स्वर्ग कौन सी चीज है। स्वर्ग बहुत अच्छी चीज है, वहां दुख नहीं होता, संसार के सभी सुख वहां पर मिलते हैं, ये कोई शारीरिक पीड़ा तुम्हें नहीं होगी, ये बीमारी नहीं होगी। उसने कहा और क्या होता है। बोले और मुझे नहीं मालूम, यदि तुम्हें ज्यादा जानकारी चाहिए हो तो मेरे साथ चलो, हम तुमको एक देवदूत के सामने खड़ा कर देंगे, वो स्वर्ग से आया है, वो तुम्हें सब जानकारी देगा। उस भक्त ने नाली में पड़े हुए उस प्राणी को, दुखी प्राणी को निकाला और अपना साथ लेकर के देवदूत के सामने गया और खड़ा कर दिया, इसे स्वर्ग पहुंचा दो, ये सुखी होना चाहता है, बहुत दुखी है। तो देवदूत ने पूछ लिया उससे, उस प्राणी से, क्यों तुम सुखी होना चाहते। हाँ तुम्हें स्वर्ग चाहिए, हम चाहे, स्वर्ग में क्या है पहले बताओ। स्वर्ग में अपार वैभव है, महल है, मकान है, पांच इंद्रियों के विषय भोग की सामग्री है, कहीं कोई पीड़ा नहीं है शारीरिक। अच्छा और क्या है। बोले और क्या चाहेगी आपको, सब कुछ है। कहने ये बताओ वहां पर नाली वगैरह है कि नहीं। बोले वहां स्वर्ग में नाली का क्या काम। अरे स्वर्ग में नाली नहीं है, मुश्किल नहीं, स्वर्ग में माली का कोई काम नहीं है। तो बोला वो प्राणी के रख रहा हूं तो अपना स्वर्ग का सुख मुझे नहीं चाहिए, मेरा सुख तो मेरा स्वर्ग तो नाली में ही, मुझे वहीं आनंद आ रहा, मुझे नहीं चाहिए। यदि कोई व्यक्ति, कोई आचार्य, कोई महाराज यहां करके आपसे कहे, कोई उपदेशक कहे कि तुम्हें चलो हम मुक्ति का मार्ग बताते हैं, यहां है, तो आप कहते और बताओ वहां क्या क्या है, वहां वो पापों की नाली है कि नहीं, वो विषय सुख की नाली है कि वहां नहीं है, वहां कोई काम नहीं है, तो रखे रहो आपका सुख हमें नहीं चाहिए। हमें आनंद विषय सुख में आ रहा, उस नाली में पले होंगे हैं, फिर भी कीड़े कुल बुला रहे हैं, मक्खियां बन बना रही हैं, लेकिन फिर भी उससे कोई उदासीनता नहीं है हमारे लिए, हमें तो उसी में आनंद है। महाराज बहुत अच्छा चल रहा है, आनंद है आपकी कृपा से, बहुत अच्छा है, क्या हमारी कृपा से अच्छा है। अरे तुम अपनी कृपा से ठीक हो, दूसरे की कृपा से ठीक कोई नहीं हो सकता, अपनी कृपा से ठीक हो, अपनी प्रवृत्ति को सुधारो, अपनी बुद्धि को सुधारो, अपने विश्वास को सुधारो, अपने आचरण को सुधारो, तुम्हारा कल्याण होगा, अन्यथा ऐसे कल्याण नहीं हो सकता है। हम सत्य को पाने के लिए निराकांक्ष होने की कोशिश करेंगे, आकांक्षाएं बाहर ले जाती हैं, निराकांक्ष अंदर की यात्रा कराता है, और सुख और आनंद भीतर में मिलेगा, इसलिए हम निराकांक्ष होने की कोशिश करेंगे। यही साधक के जीवन की दूसरी सीढ़ी है, उसके जीवन का दूसरा कदम है, इसी भावना के साथ कि हम सब के जीवन में निराकांक्ष भाव पैदा हो, हम सब सम्यक श्रद्धानी बने और इस मार्ग पर सत्य की खोज में प्रतिपल आगे बढ़ते चले जाएं। इसी भावना से अब मुनि श्री जी हम सबके लिए इस मार्ग को और अच्छे से प्रशस्त करने की कृपा करेंगे, जिससे कि हमें कोई भय ना रहे, जिससे कि हमें उस मार्ग पर चलने के बाद कोई आकांक्षा ना रहे, हम निराकांक्ष भाव से आगे बढ़ते चले जाएंगे और सत्य की प्राप्ति का साधन हमें प्राप्त होता चला जाएगा। ऐसी कृपा अनुकंपा हम सबके ऊपर करेंगे आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज।
जाते भये अरहंतादिमः, जो विद्यादि सागर सुदी गुरु हैं हितैषी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी, वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने, पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने, सतत केवल ज्ञान पाए। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरु और विद्यासागर मुनि महाराज की, एक दिन जब अपन बैठे थे, विचार अपन ने किया था कि जीवन में सच्ची शांति पाने के लिए प्रयास करना चाहिए। मुझे लगता है कि इतना मन तो बनाना ही पड़ेगा कि मुझे सच्ची शांति पानी है, चलने का मन तो उसके बाद बनाना पड़ेगा कि अब पाने के लिए क्या क्या करना है, पर इतना मन तो बन गया होगा आपका कि पानी तो है शांति, तो सच्ची शांति पानी है। कोई और दूसरा देकर के जाएगा क्या, तो ऐसा भी तो नहीं लगता है। कितने लोगों के सामने तो हाथ फैला के देख लिया, कोई तो नहीं दे पाया। जिस जिस से आशा करी थी कि ये देगा, उसने भी नहीं दिया, तो दूसरा दे ही नहीं सकता। शिकायत भी नहीं की जा सकती कि दूसरा क्यों नहीं देता शांति। कोई ईश्वर कोई तीर्थंकर भी आ जाए वो भी नहीं दे सकता। आए तो थे भगवान महावीर स्वामी भी आए थे, थोड़ी कृपा करते और सबको अपने साथ ले जाते, वहीं पर मोक्ष में नहीं ले जा पाए। तो ये आशा भी हमारी अब टूट गई है कि कोई आएगा और हमें यहाँ से ले जाएगा और शांति की जगह पे बिठा देगा। अब तो जो कुछ भी है सो अपने हाथ में ही है, पिताजी जब तक रहें तो तब तक तो थोड़ा ऐसा रहता है कि जो भी पूछना होगा सो उनसे पूछ लेंगे, लेकिन उनके नहीं रहने के बाद तो दो ही स्थितियां बनती हैं, कि तो सब जो कछु रखो है सो मिटा दो और फिर नए सिरे से और बना लो, तो ये साल उसमें तो है नहीं। ऐसा हमें समझ में आ गया है कि अब जब हमारी ही जिम्मेदारी है तो इस कर्म के चक्र से और इस संसार के चक्र से जो निरंतर गतिशील है क्या करूं, क्या कोई बचने का उपाय है। कल बैठ के आत्मनिरीक्षण भी हमने कर लिया है कि लगती तो सब बातें ठीक हैं, शांति के बाबत जो जो सुनी है कि सच्ची शांति ऐसे मिलती है सो ठीक लगती हैं, लेकिन ये कर्म तो बीच में आ जाते हैं, ये कुछ करने ही नहीं देते हैं। सोचता तो हूं कि वैभाविक परिणति जो मेरी संसार में हुई है उससे बचूं, लेकिन क्या करूं, क्रोध नहीं करना चाहता हूं, क्रोध का उदय आता है तो मजबूर हो जाता हूं। ऐसा अभी लगता तो होगा, बहुत कुछ करना चाहता हूं, शांति पाना चाहता हूं, लेकिन बहुत बाधाएं आ जाती हैं संसार की, उन बाधाओं को कैसे पार करूं। चलना तो चाहता हूं, ये भी जानता हूं कि मोक्ष का मार्ग उपसर्ग और परिसह से होकर के जाता है, समझ में आ गया, लेकिन उपसर्ग और परिसहों को सहन कैसे करूं, अपनी सहन शक्ति के लिए बढ़ाने के लिए क्या करूं। अब तो यहां तक बात आ गई है, कैसे जूझूं इस संसार से, इससे बचने के लिए क्या उपाय करूं, निकलने का और शांति को पाने का क्या उपाय करूं। एक युवक था, उसकी नई नई शादी हुई थी और वो एक दिन प्रवचन सुन करके वापिस लौटा तो नहा रहा था वो, तो उसकी जीवन साथी ने कहा कि आप रोज जाते हैं प्रवचन सुनने। उसने कहा कि हाँ रोज जाते हैं प्रवचन सुनने, वहां पर हमारा भैया भी मिलता होगा, वो भी रोज जाता है। हाँ मिलता है, तुम्हारा भाई भी मिलता है, वो भी रोज जाता है। कल हमारा भैया हमसे कह रहा था, वैसे तो और भी पहले बहुत दिन से कह रहा है कि अब तो सच्चाई के रास्ते पर निकल जाना चाहिए, लगता तो यही है कि दीक्षा वीक्षा ले लेना चाहिए, महाव्रति होने के बाद ही जो है थोड़ी बहुत शांति मिल पाएगी, ऐसा वो बहुत दिन से सोच रहा है। तो इस युवक को हंसी आ गई, तो उसकी जीवन साथी बोली कि हंसते क्यों हो, इसमें हंसने की क्या बात है, वो कितना अच्छा विचार कर रहा है कि उसे शांति पानी है तो वो शांति का उपाय करने का विचार कर रहा है, घर छोड़ने से शांति मिलेगी उसको ऐसा लगने लगा है, और कितना उत्सुक है, कितना अच्छा कर रहा है वो, इसमें हंसने की क्या बात है। बोले हंस इसलिए रहा हूं कि जब करनी है तो सोच काय करे, जब जो करने ही तो कर डालो ना, गुस्सा करते हैं तो क्या सोचते हैं कि अब मुझे गुस्सा करना है, कर डालते हैं। जब आग लग जाती है तो कहीं बैठे हुए हो तो क्या सोचना पड़ता कि उठूं कि नहीं उठूं, भागूं यहां से कि नहीं भागूं, बस उठते हैं और भाग जाते हैं। अरे इसमें सोचने की क्या बात है, लगता है कि अभी उसे जाना वाना नहीं है, अभी तो वो बहाने बना रहा है कि मैं सोच रहा हूं। शुरू हुआ उसकी जीवन साथी को कि कैसा प्रवचन सुनने जाता है ये, तो उसने कहा कि अच्छा तुम भी तो इतने दिन से प्रवचन सुनने जाते हो, कोई तुमसे एकदम कहे कि संसार छोड़ दो और मुक्ति के लिए रास्ता बन, तुम कर सकते हो क्या। अरे जैसे ही ऐसा सुना उसने तो कहते हैं सच्ची घटना है पुराणों की, कहते हैं कि कपड़े सब उतार करके नहा रहा था, सो ज्यों का त्यों वहां से उठा और दरवाजा खोल करके बाहर निकलने लगा। जीवन साथी घबराई, करते क्या हो, कपड़े तो पहन लो। उसने कहा बात हो गई पूरी, अब सोचना क्या है, अपनी बात अपने पर लागू हो गई। मैं तो हंस रहा था कि वो क्यों सोच रहा है, मैं भी तो बहुत दिन से सोच रहा था प्रवचन सुनते सुनते, आज बात समझ में आ गई कि सोचने की आवश्यकता नहीं। और कहते हैं कि सीधा जाकर के जंगल में और उसने अपने आत्म कल्याण के लिए उपाय करना शुरू कर दिया। हमारी ही बात हम पर लागू नहीं हो रही है, सब हम आत्मनिरीक्षण करके सब कुछ जान चुके हैं, लेकिन इसके बाद अब कब लागू होगी, ये हमारी अब जिम्मेदारी बहुत बड़ी आ पड़ी है। क्या करें, अब एक चीज जरूर समझ में आ रही है कि कोई कर्म बीच में आ रहा है और उस कर्म को जीतने के लिए क्या करें। समझ लेते हैं कि कर्म क्या चीज है जो कि बीच में बाधक बन रहा है और हमें अपनी शांति का उपाय जानते हुए भी उस तरफ ले जाना नहीं दे रहा है। तो भैया जो हम करते हैं उसी को तो कर्म कहते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी है। जो हम भोगते हैं उसको हम कर्म कहते हैं और जो हम बांधते हैं वो भी कर्म कहलाता है। मन से जो करते हैं वो मन का कर्म है, वचन से जो करते हैं वो वचन का कर्म है, शरीर से जो करते हैं वो शरीर का कर्म है। तीनों प्रकार से जो हम करते हैं वो कर्म है और जो करते हैं वही हमारे साथ में संस्कार बनकर के बैठ जाता है और जब वो संस्कार उदय में आता है तो उसे हम भोगने को मजबूर हो जाते हैं। किससे कहें कि ये कर्म का उदय हमें परेशान करता है, न बांधा होता न बंद उदय में आता न भोगना पड़ता। हमने किया है, हमने बांधा है अपने लिए अपने हाथ से, कौन बताएगा। पढ़ना एक है तब वो, जिस प्रज्ञा के द्वारा तुमने जिस ज्ञान के द्वारा अपने को बंधन में डाला है उसी ज्ञान का दिशा बदल दो तो उसी ज्ञान से तुम उससे मुक्त भी हो सकते। ये कर्म बहुत बड़े नहीं है, हमें लगते हैं कि ये कर्म हमें यहां संसार में मजबूर किए हुए हैं, हम तो सब जानते हैं लेकिन बच नहीं पा रहे हैं, क्या करें। तो कर्मों की तासीर समझ लें कि ये जो कर्म हमारे बांधे हुए हैं वो हमसे बड़े नहीं है। क्रिएशन इज नॉट मोर देन क्रिएटर। कभी भी कोई क्रिएशन हो, कभी भी कोई रचना हो, वो रचनाकार से बड़ी नहीं हो सकती। कर्म के बनाए हम नहीं है, कर्म हमारे बनाए हुए हैं और वो हमसे बड़े नहीं हो सकते हैं, बीच में हमें बाधा नहीं डाल सकते हैं। तो फिर बात क्या है कि बाधा तो पड़ रही है, हम बहुत सोचते हैं अपने कल्याण की बात, बहुत सोचते हैं अपनी शांति का उपाय करें, लेकिन ऐसी क्या चीज है जो बाधक बन जाती है। तो कहते हैं तीन ही बातें बाधक हैं, हमारा मोह बाधक है। कर्म के उदय में हमारा गाफिल हो जाना बाधक है और दूसरी बात हमारे पुरुषार्थ की कमी है और तीसरी बात कर्म के बंधन के प्रति हमारी अज्ञानता भी है। हम नहीं जान पाते हैं कि जो हम जैसा बांध रहे हैं वो हम कैसे भोगें और हमें भोगना पड़ेगा। जैसे कि कोई आदमी उधार लेता चला जाए और ये भूल जाए कि डेबिट हो रहा है उसके नाम से और एक दिन चुकाना पड़े तो क्या होगा, वो तो लेता चला जाए, क्रेडिट कुछ नहीं है, डेबिट में सब डल रहा है, उधार लेते चले जा रहे हैं, वो निश्चिंत है कि किसी और कोई और होगा जो चुकाएगा। नहीं, जितना भी हमने उधार किया है और जितना हम आगे करते चले जा रहे हैं वो सब हमको चुकाना पड़ेगा, चुकाना पड़ता है हर एक को। ये बात अगर हमारे बुद्धि में आ जावे तो हम इन कर्मों को काट सकते हैं जो कि हमें शांति नहीं देने देते हैं, जरा भी शांत नहीं बैठने देते। कमरे में दो ठो खिड़कियां बनवा लो और दो ही खोले रहो और कहो के हवा नहीं आवे, ऐसा हो सकता? काय को बनवाई थी? हवा के लिए तो बनवाई थी, अब हवा आती है तो झेलना पड़ेगी। और एक खिड़की खुलती है उद्यान की तरफ और एक खुलती है कचरा घर की तरफ। अब जो खोलना चाहो वो खोल, और नहीं खोलना चाहो तो शांत होकर के बैठो। मन वचन काय की ऐसी खिड़कियां निरंतर हम अपने भीतर खोलते रहते हैं। थोड़े से शुभ कर्मों की खिड़कियां खोलते हैं, फिर वहीं अशुभ कर्मों की खिड़कियां खोल लेते हैं। जब अशुभ कर्म की खिड़की खोलते हैं तो बदबू आती है, और जब शुभ कर्म की खिड़की खोलते तो थोड़ा सा सुख मिलता है। और दोनों के अलावा तीसरी बात तो अपन जानते नहीं है। जब भी करने का मौका आता है तो क्या अच्छा करते हैं क्या बुरा करते हैं, कुछ नहीं करना इसका उपाय तो हमने कभी नहीं किया। कर लो, कुछ ना कुछ तो कर लो। तो या तो शुभ और अशुभ, संसारी प्राणी तो हम सब जो है दो में से कोई एक को ही चुन पाते हैं, या तो शुभ को चुन पाते हैं या अशुभ को। विरले हैं वो जीव जो दोनों को नहीं चुनते हैं और शांत भाव से अपने आत्मा में लीन रहते। पहुंचना तो हमें वही है, लक्ष्य तो वही है, लेकिन जब तक हम नहीं पहुंचे तब तक क्या करें? इतना तो कर लेवे कि कम से कम अशुभ की खिड़की तो बंद करें, नहीं तो पूरा पूरा जीवन ही बदबूदार हो जाएगा और हो ही रहा है। शुभ की खिड़की तो खुली रखी रहने दें ताकि थोड़ी शांति पूर्वक विचार तो कर सकें कि अब इसको बंद करने का क्या उपाय है। इसको बंद करने का कोई उपाय नहीं है, कमरा में से बाहर निकल जाओ, बस यही उपाय है, मुक्त हो जाओ उसी क्षण। कोई भी कर्म ना करो, पहले अशुभ कर्मों से बचें, शुभ कर्मों को स्वीकार करें, उसके बाद अपने शुद्ध तत्व का ध्यान करेंगे तो शुभ तो अपने आप आसानी से रुक जाएगा। पूरा संसार छोड़ दिया एक के पीछे, फिर कहते हैं ये जैन दर्शन ऐसा है कि उस एक को भी छोड़ना पड़ेगा। सारे संसार का मुंह छुड़ा करके भगवान से मुंह लगवा देते हैं, फिर कहते कि ये भी पर है, इसको भी छोड़ दो, अपने भीतर आ जाओ। छोड़ का दो भीतर आ जाओगे तो ये तो जंपिंग बोर्ड है, आपने जंप किया वो तो पीछे छूट जाने वाला है। ये तो सीढ़ी है कि आपने अगली सीढ़ी पे पैर रखा और पीछे छूट जाने वाला है। अच्छे बुरे में से मुझे क्या चुनना है ये मेरे ऊपर निर्भर करता है, लेकिन मुंह मानता नहीं है। पुरुषार्थ भी की भी कमी हो जाती और बंध की अज्ञानता, एक बहुत छोटी सी घटना से ये तीनों चीजें अपन समझने की कोशिश करें। कर्म का उदय तो भैया सबको है, किसको नहीं है कर्म का उदय? लेकिन कर्म के उदय में कितना राग द्वेष करना है ये हमारे ऊपर निर्भर है। कर्म जब उदय में आवे तो उसके साथ हमें क्या व्यवहार करना है ये हमारे ऊपर निर्भर है। और आगे के लिए कर्म बांधना है कि नहीं बांधना जी हमारे ज्ञान पर निर्भर है। हम अज्ञानी होने की वजह से निरंतर बांधते चले जाते। एक घर में पिता नहीं रहे, चार बेटे थे। पहुंचे उनके घर तो देखा कि मंझला वाला बेटा सब लगा हुआ है काम में, जेजम बिछवा रहा है, खाने पीने की सामग्री इकट्ठी हो रही है, लोग आएंगे कहाँ बैठेंगे, किस किस के साथ क्या क्या व्यवहार हैं, उन सब का हिसाब किताब वो घर का बनवा रहा है। अब पिता तो मर गए हैं, अभी अर्थी जो है उठी नहीं है, पर वो सब काम में लगा है कि अर्थी के सामान कौन कौन से हैं वो सब जुटाना पड़ेंगे। चार लोग आएंगे तो उनको कहाँ बिठालना है, पानी वानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी, सब व्यवस्था में लगा हुआ। उसके भी पिता मरे हैं लेकिन लगा है काम में। तो पूछते कि क्यों, बड़ा वाला कहाँ गया? बड़ा वाला दुकान पर गया है, अब ऐसे ही खुली पड़ी हुई थी, पिताजी तो नहीं रहे लेकिन काम तो सब पड़ा हुआ है, जरा समेट करके बंद करके और आता होगा, सुबह से ही निकला हुआ है। तो बड़ा वाला दुकान देख रहा है। और तीसरा वाला तो पोस्ट ऑफिस गया हुआ है, वहां पर सबको चिट्ठियां लिखनी है, सबको खबर करनी है कि पिताजी नहीं रहे, वो भी अपने काम में लगा है। चौथे वाले का क्या हुआ? चौथे वाला किन्ने जब से खबर सुनी है कि पिताजी नहीं रहे, देखो वो मां की गोद में बेहोश पड़ा हुआ है। चार बेटे हैं, चारों को बराबर बराबर पिता के मरने का दुख होना चाहिए, नहीं, सबको अलग अलग है। जो हमेशा से दुकान संभालता था उसके दिमाग में वही चीज है कि ठीक है, अब पिताजी तो नहीं रहे हैं, दुकान तो अपने को संभालनी, बड़े अपन घर के हैं, सो पहले नंबर उसको देख लो। और दूसरा वाला हमेशा घर गृहस्थी का सामान मिलाता जुटाता रहता था, होम मिनिस्टर था वो, तो उसने फौरन अपना काम पिताजी के जाने के बाद रखी है अर्थी, फिर उसने भी संभाल लिया अपना काम। और तीसरा वाला हमेशा आने जाने में व्यवहारी करता रहता है, सो उसने फौरन सबका मालूम कि किसका क्या एड्रेस है, जिन जिन के यहां हम गए हैं उनसे हमारा रिश्ता है, सो उनको चिट्ठी पत्री लिख रहा। चौथा वाला तो अभी जानते नहीं, चौथा वाला तो ये जानता कि पिताजी ने खिला दिया सो खा लिया, और पिताजी ने नहीं जिस दिन खिलाएंगे सो उस दिन तो मैं भूखा ही मर जाऊंगा, सो वो पड़ा हुआ है वहां पर बेहोश के। अब तो सुना है कि चले गए, अब कौन मुझे पालेगा। चार लोग हैं, चारों को एक सा उदय है, एक सी घटना चारों के जीवन में घटित हुई है, कर्म के उदय में घटित हुई है, लेकिन चारों उसके साथ अपना अलग अलग पुरुषार्थ कर रहे हैं। और एक तो बिल्कुल कर्म के बंध से है, बिल्कुल भी नहीं जानता है, सो वो बेहोश पड़ा हुआ है। ऐसा ही हम चाहें तो कर्म के उदय के साथ ऐसा ही व्यवहार कर सकते हैं। जब कर्म का उदय आवे तो हमें क्या करना है, उसके साथ कैसा व्यवहार करना है। जैसे अपन घर में आंवला लेकर के आते तो क्या करना हमें आंवले का, हम चाहें तो उबाल करके नमक डाल के उसका कसायलापन दूर कर सकते, और हम चाहें तो मुरब्बा बना सकते, मीठा करके खा सकते, और हम चाहें तो आंवले की चटनी बना सकते। तो ऐसे ही हमारे साथ भी है कि आया है कर्म उदय में, आएगा, जो हमने बांधा है वो कर्म उदय में आएगा, लेकिन हमें क्या करना, उसका कसायलापन कम करके उदय में लेना है, ठीक है वो भी हो सकता, मीठा करके लेना है, मीठा कर, वो चाहो तो चटनी मार सकत कर्म की, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कर्म, क्योंकि हमने बांधा है, हम जैसा लेना चाहेंगे हम वैसा ले लेंगे। हम चाहें अगर कि हमारे नाम से नोटिस आया हो, 15 दिन का नोटिस आया, हम लिख के दे दें कि कह दो है ही नहीं, मिलेंगे बात वापिस चला जाएगा नोटिस। कर्म का उदय आकर के हमारा बिगाड़ क्या कर लेगा। मैंने किया विगत में कुछ पुण्य पाप, जो आ रहा उदय में स्वयमेव आप, होगा न बंध तब लो जब लो न राग, चिंता नहीं उदय से बन भी दराग। मैंने पुण्य पाप बहुत अर्जित किया हुआ है जो उदय में आ रहा है, मेरा कोई बिगाड़ नहीं करने वाला है, बिगाड़ तो मेरा तब होगा जब मैं उसके उदय में राग द्वेष करूं, कषाय करूं, तो मेरा बिगाड़ कर सकेगा आगे के लिए और मुझे संतति दे पाएगा अपनी। और अगर मैं शांत रह जाऊं, उसे रिजेक्ट कर दूं, कह दूं कि मुझे नहीं चाहिए, क्रोध का उदय आयो, मैं कहूं कि नहीं करते, क्रोध जाओ तुम्हें जो करना सो कर लूं। हाँ, क्रोध का उदय भीतर आए और हम कह दें कि नहीं करना हमें क्रोध, कौन होते हो तो हमें क्रोध करवाने वाले, ऐसा नहीं कह पाते हम। इसीलिए तो हम अपने विभाव में फिर से डल जाते हैं, स्वभाव को भूल जाते हैं हम, तो हम विड्रॉ नहीं कर पाते हैं उन कर्मों के उदय में, वो विवादक बन जाते हैं और हम शिकायत करते रहते हैं, सब तरफ से शिकायत बंद हो जाती व्यक्ति की, एक शिकायत अंत तक रह जाती, क्या करें, कर्म को उदय है। अच्छा, सब पैसे तो दूर हो गई, अब एक चीज पे आकर के रुक गई कि क्या करें, कर्म को उदय है, होत नहीं है, कछु नहीं हो। हम बहुत करो चाहत, स्वाध्याय करो चाहत, मनो निदान लगा, हम पूजा करना चाहते मन नहीं लगता, क्या है आखिर बात, हमारे बांधे हुए कर्म हम पर भारी कैसे हो गए, हमारी अज्ञानता की वजह से, हमारे मोह की वजह से, हमारे पुरुषार्थ की कमी से हो गए। और हम अपनी अज्ञानता हटा दें कर्म के बंधन के बारे में, हम अपना मोह वहां से हटा लें और थोड़ा सा पुरुषार्थ करें, तो हमारा तो पूरा मोक्ष मार्ग इसी पर टिका हुआ है कि हमने जो बांधा उसे हम ही काट सकते हैं। लेकिन हमारी हालत तो उस लोहार के जैसी है कि जो जंजीरें बनाता था और अपनी जंजीर पे सील लगा देता था, उस सील कोई भी देख ले वे तो समझ जाता था कि जब जंजीर तो आज तक कोई से नहीं टूटी, नहीं टूट सकता। उसकी इतनी मजबूत जंजीर बनती थी कि वो सील देख करके, वो ठप्पा देख करके देश विदेश के लोग समझ जाते थे कि जा खरीद लो इस मार्का की, टूटने वाली नहीं, कोई आ जाए कोई नहीं तोड़ सकता। और एक बार ऐसा हुआ कि राजा नाराज हुआ, सो उसने उस कलाकार को पकड़वा लिया, पकड़वाया, सो हथकड़ी डली, हथकड़ी डली तो वो मुस्कुराता था, चला जाता था। एक साधु उसको देख करके बड़ा दंग हुआ कि भला आदमी दोनों हाथ में हथकड़ी पहने हुए और हंसता हुआ चला जा रहा है, बदबाद जरूर कुछ है। तो उससे कुछ नहीं पूछा, देखें क्या होता है। जब वहां जाकर के जेल में उसको बंद कर दिया तो थोड़ी देर के बाद देखा तो वो रो रहा है। ये तो अजीब व्यवहार है, अभी तक तो हंस रहा था, अब जो है रो रहा है। पूछा उस साधु ने कि भैया मैं तो तुम्हारे पीछे पीछे चला आया इस बात को देख करके कि तुम्हें जंजीर बंदी होने के बाद भी मुस्कुरा रहे थे और अब तुम जो है मैं पूछ ही नहीं पाया उसके पहले जो है तुम रोते मालूम पड़ते हो। तो उसने कहा कुछ नहीं, मेरे हंसने का कारण ये था क्योंकि मुझे विश्वास था कि आज तक दुनिया में कोई जंजीर नहीं बनी जो मैं ना तोड़ पाऊं, लेकिन जब मैंने यहां पर देखा कि इस जंजीर में तो मेरी सील लगी है तो जी तो किसी से नहीं टूट सकती है, मुझे बिल्कुल पक्का एहसास है ये मेरी बनाई जंजीर है, ये कोई नहीं तोड़ सकता। तो मुझे रोना आ रहा है कि अब क्या करूं, मैं तो सोच रहा था किसी और की बनाई हुई जंजीर से मुझे बांध दिया गया तो अभी झटका जाऊंगा और तोड़ दूंगा, लेकिन ये तो मेरी बनाई जंजीर है और मेरी बनाई जंजीर की तासीर ये है कि उसे कोई नहीं तोड़ सकता, लेकिन ये भूल गया कि उसे मैं खुद तो तोड़ सकता। अपनी बनाई जंजीर हम खुद तोड़ सकते हैं, इन कर्मों से हम जूझ करके अपना कल्याण खुद कर सकते हैं, लेकिन भूल जाते हैं। सब जानते हैं कि कौन से कर्म करने से क्या फल मिलेगा, इस पे अपन फिर चर्चा करेंगे कभी, लेकिन आज तो ये थोड़ी सी बात ध्यान में हमारे आ जावे कि जो कुछ भी हम कर्म करते हैं वे सब हमसे बड़े नहीं हैं, हम उन कर्मों की बाधा को भी हटा करके अपने मोक्ष मार्ग को शुरू कर सकते हैं। हम ये शिकायत नहीं कर सकते कि ये कर्म हमें परेशान करते हैं और हमें संसार से बचने ही नहीं देते हैं, पर सारा ज्ञान होने के बाद भी कहाँ चूक हो जाती है, तो यही हो जाती है कि हम अपने भीतर इस बात के लिए विश्वस्त नहीं हो पाते, हमारा आत्मविश्वास जागृत नहीं हो पाता है कि हम ही तोड़ सकते हैं। वर्णी जी के जीवन की एक घटना आपको सुनाऊं और बात पूरी करूं। ये कर्म फिलॉसफी फिर बैठेंगे अपन, थोड़ा सा टाइम तो आपने बढ़वा ही लिया है, मैं क्या बढ़ाऊंगा, आपका जितना है उतना तो मुझे भी चुकाना तो पड़ेगा।
Thank you.